है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है।
ओम शांति। आज का टॉपिक है प्रश्न उत्तर में कि कौन सा गुण परमार्थ और व्यवहार में सर्वप्रिय बना सकता है। उसके उत्तर में है कि पहले आप एक दो को आगे बढ़ाना, फॉलो फादर। तो उसमें हम देखेंगे कि फॉलो फादर तो करना ही है, लेकिन सबसे पहले स्वयं पर अटेंशन, क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं उसके बाद सर्व। तो स्वयं पर अटेंशन रखने के लिए अपनी धारणा पर ध्यान रहना चाहिए। ज्ञान योग धारणा और सर्विस में बैलेंस होना चाहिए, लेकिन मुख्य धारणा दैवी गुणों की धारणा पर अटेंशन। दूसरा है कि यज्ञ में हम अच्छी तरह से तप चल सकते हैं, सदैव हाजी का पाठ पक्का हो, क्योंकि हाजी का पाठ पक्का नहीं होगा तो भी हम सर्वप्रिय नहीं बन सकते हैं। और तीसरी बात है कि ओटे सो अर्जुन, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी पहले नंबर में चले गए क्योंकि वो किसी को देखा नहीं, अपना पुरुषार्थ करते रहे। तो बाबा हमें भी कहता है कि फॉलो फादर करना है तो ओटे सो अर्जुन, जो भी बाबा श्रीमत देते हैं, मर्यादाएं देते हैं, उसमें सबसे पहले मैं। दूसरा है बालक सो मालिक, क्योंकि ये बहुत बड़ा संगठन होता है, उसमें मीटिंग्स भी होती है, बहुत प्रकार की बातें भी होती है। तो हम सभी बाबा के बच्चे हैं, तो ज्ञान में चलते हैं तो मर्यादा भी पता है, श्रीमद भी पता है, लेकिन वहाँ जब मीटिंग्स होती है तो अपनी अपनी राय देनी होती है। तो मालिक बन करके राय दो, क्योंकि मालिक हो। लेकिन जब निर्णय कोई होता है तो बालक बन करके फॉलो करो, क्योंकि संगठन को एकता में रखने के लिए बालक बन करके जो भी बातें हैं उसको फॉलो करेंगे तो प्रिय बन सकते हैं, लेकिन वहाँ हम ऐसा समझे कि नहीं, मैंने जो कहा वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी कोई भी बात मीटिंग में आई नहीं, तो उससे अहम भाव आ जाएगा हम और मन में टकराव होगा कि मेरा कुछ माना नहीं। दूसरा है कि आगे बढ़ाने के लिए, बाबा तो गुणों का भंडार है, लेकिन इतनी सारी गुणों का भंडार है तो बहुत सारा गुण है बाबा में, लेकिन उसमें दो तीन गुण बताते हैं कि तो बाबा आत्मिक स्थिति का अभ्यास पहले दिन से शुरू किया था, और आत्मिक स्थिति का अभ्यास में बाबा ने परिवार को भी, मैं आत्मा हूँ जसोदा आत्मा है, परिवार को भी मतलब कि दीवार पर भी लिखते थे, इतना अभ्यास किया। दूसरा, निमित्त भाव और निर्माण भाव बहुत था, क्योंकि जब तक हम निमित्त नहीं बनते हैं और निर्माण नहीं बनते हैं, क्योंकि ज्ञान का सार ही है निर्माण बनना, कितना भी ज्ञान हो, क्योंकि जितने भी हमारे विकार है उसको हम जीतते हैं, लेकिन ये अहंकार ऐसा है, बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े योगियों को भी तो आता है, इसलिए निर्माणता। दूसरा है कि आगे बढ़ाना है, उसको भी हम देखना है कि पात्र देख करके बढ़ाना है। पात्र देख करके बढ़ाना मतलब कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम किसको बढ़ा देते हैं, और फिर जब उसको हम कुछ कारणवश दूसरों को आगे करते हैं तो नाराज हो जाते हैं। तो पात्र देख करके पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्र में बताया है कि शिवजी की तपस्या बहुत लोग करते थे, देवता ही करते थे, देवता ही बन जाते थे, बहुत शक्तियां आ जाती थी, उसके बाद उसका जो रूप है ना अहंकार के कारण बदल जाता था, तो और देवताओं को मुसीबतें आ जाती थी, इसलिए ऐसी मुसीबत ना हो जाए इसलिए बहुत पात्र देख करके आगे बढ़ाना है। ऐसे तो ड्रामा फिक्स ही होता है, लेकिन इसके 40 साल में हमने देखा है कि कई बार ऐसा भी हो जाता है, उल्टा भी हो जाता है। वो व्यक्ति जब सेंटर में रहता है और कुछ होता है तो उसको अंदर से लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, अहंकार आता है, तो जो टीचर होते हैं उसको भी डोमिनेट करते हैं। उसको आगे इसलिए बढ़ाया कि सहयोग भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं, पात्र को देखना है कि कहीं उल्टा ना हो जाए, मुसीबत ना हो जाए, तो पात्र को देख करके दान करना है। दूसरा है कि जब भी यहाँ हम संगठन में रहते हैं तो बहुत बार ऐसा भी होता है लाइन में लगना पड़ता है, जैसे भोजन की लाइन में लगना पड़ता है, गिफ्ट होता है उसकी लाइन में लगना पड़ता है, बस में बैठने के लिए जगह लेनी पड़ती है। वहाँ अगर हम किसी को बहुत जल्दी है, अगर वहाँ हम उसको आगे कर देते हैं उसी समय बहुत खुश भी हो जाता है। अगर गिफ्ट की बहुत लंबी लाइन है और उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़ा आगे जाने दो ना, तो हमने कहा ठीक है, तो व्यक्ति खुश भी हो जाता है। छोटी छोटी खुशियां हैं वो तो संगठन में बहुत जरूरी है, उससे हमारी छोटे छोटे काम से हमारा व्यक्तित्व भी बनता है, हमारी पर्सनालिटी भी बनती, ऐसे नहीं बड़े बड़े काम करने से हमारी पर्सनालिटी बनती, छोटे छोटे काम जैसे बाबा, ऐसे तो हमने देखा हम सभी ने कि पर्सनालिटी कितनी हाई थी, लेकिन साधारणता होते हुए भी असाधारणता, छोटे छोटे काम करते हुए भी दिव्यता महसूस होती थी। और जैसे स्मशान घाट है, वहां भी जब सीढ़ियां बनाते थे तो बाबा ने ये नहीं देखा कि मैं तो इतना बड़ा हूं, ये सारी बहनें उसको लगा दूं, नहीं, और जब सीढ़ियां बनाते थे तो उसी समय जगदीश भाई जी आए थे। उन्होंने समझा कि मतलब कि बाबा तो ऐसे होगा, कैसे होगा, बड़ी अथॉरिटी से होगा, लेकिन वो सीढ़ी बना रहा था। बाबा कहते बच्चे ऊपर जा बैठो, लेकिन आप तो इतनी निर्माणता भी थी, लेकिन साधारण काम था। गोबर का वो बनाते थे, उसमें भी बाबा कितनी कितनी उसकी दिव्यता दिखाई देती थी। खेल भी करते थे बाबा, तो भी बच्चों के साथ खेलना कूदना सब कुछ होता था, एक परिवार की भावना थी। तो ये किसी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ खून तो अपने में चाहिए ना। सबसे पहले तो अपनेपन की भावना, जब तक अपनेपन की भावना नहीं होती तब तक उसको कुछ सिखा नहीं सकते। हमने कई सेंटर में देखा है कि उसको बहुत अच्छा किचन में बनाना आता है, लेकिन दूसरों को जल्दी सिखाते नहीं है। तो हमें जो भी आर्ट है वो अगर हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं तो वो भी आगे बढ़ते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं, और उसकी दुआएं मिलती है। तो दुआओं लेने का एक बहुत सहज उपाय है किसी को आगे बढ़ा देना। तो सबसे पहले अपने में उदारता होनी चाहिए, अपनापन की भावना होनी चाहिए, और अगर उदारता नहीं है तो भी हम नहीं उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उदारता भी ऐसी होनी चाहिए कि कभी हमको अगर कोई आगे बढ़ जाता है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए, ढोल नहीं पीटना चाहिए कि देखो मैंने इतनों को ज्ञान में बनाया, मैंने इसको आगे बढ़ाया, अगर मैं नहीं होते तो कुछ नहीं होता। ड्रामा में सब कुछ फिक्स ही होता है, लेकिन हमें हर जगह पे जा करके ऐसा वर्णन नहीं करना चाहिए कि देखो मैंने किस किस को आगे बढ़ा दिया, मेरे वजह से वो इस जगह पे है, ऐसा ढोल भी नहीं पीटना चाहिए। दूसरा कि ये भी नहीं कहना चाहिए, और जिसको भी हम आगे बढ़ाते हैं वो बहुत आगे बढ़ जाता है, और बढ़ाने वाले व्यक्ति वहाँ रहती है उसको अहंकार आ जाता है कि देखो ड्रामा में फिक्स ही था ना, उसमें उसका क्या रोल था, कोई रोल नहीं, ड्रामा तो फिक्स ही होता है। लेकिन फिर भी जो निमित्त बनते हैं उसका एहसान मन तो होना ही चाहिए, भल किसी को बोले ना बोले, लेकिन दिल से उसके प्रति रिगार्ड रिस्पेक्ट होना चाहिए कि व्यक्ति अगर नहीं होता तो मैं इतना तो नहीं बन सकता। तो निमित्त कोई ना कोई बनता ही है आगे बढ़ाने के लिए। जैसे हम गुजरात में थे तो, अहमदाबाद में थे तो हमारे लिए दीदी कितना करते थे आगे बढ़ाने के लिए, कभी कभी है ना डांटती भी थी, हम समझते नहीं थे, हम रोते थे कि हमको ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन फिर धीरे 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 हम समझे, हम छोटे थे और बहुत ही तकलीफ होती थी पहले, लेकिन फिर दीदी हमको बताती थी देखो ये है ना डिसिप्लिन है, और ऐसी डिसिप्लिन सिखाई थी कि आप कहीं भी जाओगे ना, कहीं भी जाओगे तो भी आप इसमें रहोगे। तो उस समय जब डिसिप्लिन सिखाते तभी तो कड़वा लगता है, कटु लगता है, लेकिन फिर वो जब समझते हैं कि नहीं ये बहुत मेरे लिए बहुत फायदा कारक है तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि देखो हमने ऐसी डिसिप्लिन सिखाई। क्योंकि हम दूसरी जगह पे जाते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं तो लोग हमें बहुत अरे कहाँ से आए हैं आप, मतलब कि तो बहुत अच्छा लगता है। तो डिसिप्लिन सिखाते हैं। दूसरा है कि हाजी हाँ का पाठ तो हम पढ़ते हैं, लेकिन सोच समझ करके, हर जगह हाजी हाँ करने से भी मुसीबत हो जाती है। तो कहाँ हाजी करना है, कहाँ नहीं हाजी करना है, क्योंकि हम है ना, मेरे ही उदाहरण देती हूँ, क्योंकि हम जब सेंटर में आए ना तो हम तो 21 साल के थे, तो बड़ी बड़ी बहनें थी हमारे साथ, कैलाश बहन, गीता बहन ज्ञान सरोवर में, वो ऐसे बड़ी बड़ी बहनें थी, ऐसे सात आठ बहनें थी, तो क्या होता था कि कोई हमको कहते थे कि एक साड़ी को प्रेस करने कर देंगे, हम बोला कि हाँ जी, तो वो बहन बोलती थी कि मेरे बाल में तेल डालना है, हाँ, तो क्या उस समय में सर्विस तो करते थे तो टाइम इतना होता नहीं था, फिर बोलते हमारे कपड़े को गड़ी करके प्रेस कर देना और यहाँ रख देना, तो हम है ना इतने सारे काम में से दो या तीन ही कर सकते थे, बाकी की बहनों को हमने हाजी तो कर दिया, लेकिन नहीं होता था तो नाराज भी होते थे और छोटे थे तो डांट भी पड़ती थी। तो हमने सोचा ये क्या, हम हाजी, दीदी कहती हाजी करो हाजी करो, हाजी करने से तो ये बहुत मुसीबत हो जाती है। तो दीदी ने हमको समझाया, देखो तुम्हारा पास टाइम कितना है और जो भी है उसको अब समझाओ, क्योंकि कोई भी बात है ना, कोई हमको करते हैं ना, तो पहले बराबर सुनना चाहिए, इसकी बात को बीच में कट भी नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं हम नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं, नहीं, पहले सुनो फिर आप देखो आपके पास कितना टाइम है। और वो हम जिस डिपार्टमेंट में रहते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, तो वो मतलब कि निमित्त को पूछ के भी करना पड़ता है। हमने वहाँ हाजी हाजी कर दिया, दीदी हमको घंटे मर के बुलाती थी, वो काम रह जाता था, हमने बोला दीदी, हम दीदी कहती है मैं बड़ी हूँ कि वो लोग है, यहाँ कितना काम होता है, तो सोच समझ करके हाजी करना पड़ता है। तो हर बात जब हम ऐसे ही सबको हाजी करेंगे, सबका काम करेंगे, हम पहले यहाँ आए ना तो क्या है कि रास्ते में चलते चलते हमको कोई पूछते थे ये काम कर दो नहीं, इसका नंबर क्या है डायरी में, अच्छा ये नंबर क्या है, थोड़ा लगा के दोगे, लगाने के लिए तो अंदर आना पड़ेगा ना, और इसका कोड क्या है, सब पूछते थे। तो ये रास्ते में चलते चलते कुछ होता नहीं, इसलिए हम हमारा जो ड्यूटी है उसको छोड़ करके हम हर जगह पर सबका काम करते रहेंगे, लोकप्रिय तो बन जाएंगे थोड़े समय में, उसके बाद हमको गालियां भी पड़ेगी कि देखो हाजी हाजी करता है, कुछ काम नहीं करता है, मीठा मीठा बोलता है। तो ये सब हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ क्या कैसे करना है, क्योंकि ये एक बार क्या हुआ, ये जो एयरफोर्स वाला है ना, उसको हमने कोर्स कराया था, कोर्स कराया था ना, तो वो ऐसे भावना में आ गया ना, तो उसने बोला कि हमारे वहां जो सामान मिलता है ना कम पैसे में मिलता है, तो आपको तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ता होगा। उनको तो हाँ, तो कहते हैं कि मैं ला दूँ, तो मैंने लच्छू दादी को पूछा कि ये सब नहीं नहीं ये सब चक्कर में तुम नहीं पड़ो, तुमको मालूम नहीं है ये सब तुम नहीं करो, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी में जो बैठते हैं ना तीन चार भाई, उसने भाई ने उसको बोला होगा, वो बोला हाँ हाँ, तो सबको पता पड़ा धीरे धीरे कि वहाँ अच्छा सामान मिलता है। तो एक मास हो गया, तो मेरे को एक भाई आके बोलता है बहन जी मैं तो तंग हो गया, वो मिलता है वो मंगाता तो थैला भर के आता हूँ, मुझे वो ऑफिसर कितना बोलता है। मैंने बोला वो तो मैं क्या जानूँ, वो आपका इसका हिस्सा है, हमने तो पहले बोला कि कुछ भी आप ऐसे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि संगठन बहुत बड़ा है, दो तीन लोगों का नहीं है, चार पाँच लोगों का नहीं, एक को ला के दोगे दूसरे को ला के नहीं दोगे तो परेशानी होंगी। बोला भाई क्या करूँ, ट्रांसफर कर दिया उसने अपनी ऑफिस, दिल्ली चला गया, इतना परेशान हो गया। तो कहने का मतलब कि ऐसी हमको सेवा भी नहीं करनी है, लोकप्रिय बनने की सस्ती सेवा ऐसी कर लेंगे तो बाद में हमको ये बहुत समय रहना है ना, इसलिए जहां वहां जो भी बुलाए फटाफट कर देना, शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, वो हमको दुआएं भी देगा कि देखो भाई कैसा है, और उनको क्या है हमें भी ऐसा है कि मैं उनको बोलूँ कि मेरा एक काम कर फटाफट कर दे तो अच्छा तो लगता है, लेकिन हम लंबा सोच करके ये सब काम करना पड़ता है। तो इसलिए एक तो निस्वार्थ भावना भी होनी चाहिए कि हम जो भी किसी के प्रति जो भी करते हैं नेकी कर दरिया में डाल, कहीं भी हमको वर्णन करने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसा है कि जो हमें निमित्त जिसने भी हमारा हमको आगे बढ़ाया है उसका एहसान मंद तो हमेशा रहना चाहिए। क्यों मैं बताऊं, क्योंकि हम जब यहाँ आते थे दीदी ने हमको बहुत डायरेक्शन दिया था, हमको अच्छा ही नहीं लगता था कि हम बड़े हो गए, हम इतने साल से तो दीदी आपके पास रहते, हमको समझ में नहीं आता है क्या बोला नहीं। लेकिन मैं आपको बताती, उसने हमको एक डायरेक्शन दिया था कि देखो आप मधुबन में जा रही हो ना, मधुबन वाले तो यहाँ आते हैं, हम सबको पहचानते। लेकिन बताती हूँ कि आपको है ना कोई भी डिपार्टमेंट में जाना हो ना तो 6 बजे के बाद बिल्कुल नहीं जाने का। 6 बजे के बाद क्यों नहीं जाने का? और 8 बजे के बाद तो किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं जाने का, और जाना है बहुत जरूरी है तो किसी बहन को लेके जाना, किसी अकेले नहीं जाना। तो हमने बोला इसमें क्या है, अपने तो भाई है सब। और दूसरी बात बताएगी, देखो हर एक के साथ डिस्टेंस रखने का, 2 फुट का डिस्टेंस रखने का, 1 फुट का डिस्टेंस रखने का, मतलब कि वो बताया था हमको। तो हमको ऐसा लगता था कि हंसी आती थी, हम सबको बताते थे सेंटर पे, सभी बहनों से हम बात करते थे, बताते दीदी देखो ना हमको ऐसे से डायरेक्शन देते। लेकिन वो डायरेक्शन बहुत काम में आने वाला, क्योंकि अभी का समय जो था कोरोना की बात नहीं है। लेकिन दीदी ने जो भी डायरेक्शन दिया था वो डायरेक्शन इतना इम्पोर्टेंट था, एक जीवन बन जाए हमारा। फिर अगर अपनापन की भावना भी है, उदारता की भावना भी है, लेकिन जो आगे बढ़ जाता है उसको अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि देखो ये तो यहाँ ही बैठा रहा, मैं तो सबका कल्याण कर रहा हूँ, मेरा तो बहुत आगे मधुबन में भी मेरा कितना मान हो गया है। तो अहंकार नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए अहंकार? क्योंकि जब अहंकार आ जाता है लेकिन निमित्त जो बने हैं उसको हम भूल जाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा, उस पर शिव बाबा ने उसको एडॉप्ट कर लिया ब्रह्मा बाबा को, और ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट कर उसको ब्रह्मा बाबा बना दिया, और ब्रह्मा बाबा बनने के बाद उसमें शिव बाबा ने प्रवेश किया। उतनी इतनी निर्माणता थी कि बाबा ने उस रथ को पसंद किया। क्योंकि यहाँ भी ऐसे कहते हैं कि कहीं भी हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी छोटी छोटी चीज लेने के लिए जाते हैं तो देखा होगा कितना, एक मटका लेना है तो भी, एक पेन लेनी हो तो भी पेन को पेपर में 10 पर लिखेंगे कि भी चलती है नहीं चलती। भगवान ने उस ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया, सिलेक्ट किया, उसकी परख शक्ति में कोई परसेंटेज नहीं है। शिव बाबा की परख शक्ति इतनी पावरफुल, कोई परसेंटेज नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसा नहीं समझा कि मेरा तो ब्रह्मा में फिक्स पार्टी था, अगर ऐसा समझा होता तो ये ब्रह्मा बाबा नहीं बनता। तो ब्रह्मा बाबा में कितनी निर्माणता थी, जिंदगी बाबा ने हमेशा शिव बाबा की मत है मेरी नहीं है। कभी कभी दोनों बोलते थे, बाबा कहते नहीं है ब्रह्मा बाबा की मत, कुछ भी उल्टी हो जाए मैं ठीक कर दूँ। उसने कभी नहीं बोला कि मेरी मत उल्टी हो जाए तो शिव बाबा सीधी करने वाला है, बोला क्या? नहीं बोला। तो इतना निर्माणता थी, और निर्माणता के कारण क्या है कि बाबा इतना आगे बढ़ गया। और बाबा के साथ साथ बाबा ने जो बहनें थी उनके साथ दादियाँ थी, वो अभी दादियाँ बन गई, उस समय तो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, लेकिन उनको शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा में कोई अंतर ही नहीं लगता था। उनको तो लगा ही शिव बाबा ही नहीं ब्रह्मा बाबा ही है, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ही लगता, क्योंकि बहुत कंटिन्यू साथ में रहे। तो मुश्किल था उनके लिए दोनों को अलग करना, इतना मुश्किल था। तो एक को ऑलमाइटी बाबा कहते थे, एक को बाबा कहते थे। तो ये जो हमारे साथ, हमारे सामने शांति, छोटी शांति रहती थी ना, तो हम उसको पूछते थे कि ऑलमाइटी बाबा और ब्रह्म क्यों ऐसा बोलते हो? बोले बाबा एक ऑलमाइटी बाबा, ऑलमाइटी बाबा माने शिव बाबा, और बाबा माना ब्रह्मा बाबा, ऐसे बोलते थे पहले। तो मतलब कि कितना निर्माण था बाबा ने, अंत तक कभी अपने को ऐसा नहीं बताया कि मैं हूँ तो वही होता है, मैं नहीं होता तो बाबा कैसे आता, बोला क्या? दादियों ने भी देखो कितना गुणगान, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा, बाबा को तो ऐसे रखा कि जैसे वही सब कुछ है। कहीं भी कोई भी बात होती तुरंत ही सब संगठन में मान लेते थे, और अगर उन्होंने कुछ भी अपना समझा होगा कि नहीं नहीं चलो हम अपना ही चलाएं, ऐसे लोग तो निकल भी गए, ये कारवा चलता ही नहीं। लेकिन कारवा चला कैसे? ब्रह्मा बाबा को अपना समझा, उनमें अपनेपन की भावना भी बाबा में बहुत थी, और दूसरा कि अहंकार नहीं आया। हमने यहाँ दादी जी को देखा, जब वीडियो की जब सबसे पहली बार वीडियो की बात आई थी तो करुणा भाई ने दादी जी को कहा कि दादी जी आप हैं ना यहाँ बैठे बैठे शूटिंग करते हैं आपका, नहीं तो क्या वहाँ जाना पड़ता है, तो आप हम शूटिंग करके वहाँ भेजेंगे सारे विश्व में आपका आएगा। दादी कहते नहीं नहीं क्या कहता है, ये बहने बैठी है ना, तभी शिलुबेन शिलुबेन वगैरह उनको ले जाइए। बोले नहीं दादी उन लोगों ने तो अथॉरिटी बोला है, उन लोगों ने तो दादी जी को बोला। बोला कोई बात नहीं उनको ले जाओ। अगर दादी ने उनको आगे कर दिया, और आगे कर दिया तो क्या हुआ, वो पीछे हो गई क्या? उनके प्रति भी भावना रही। ऐसी गुलझा दादी की बात जब मैं करती हूँ, हम रोज जाते थे उनके पास, और मुझे एक लालच रहती थी कि उनके पास जाने के लिए पांव दबाना है, तो मैं नीलू बहन को कहती थी मुझे ले जाओ ना प्लीज। तो नीलू बहन कहती एक पांव की मालिश आप करना, एक पांव की मैं करूँगी। लेकिन हम देखते थे कि जब दादी जी आती थी तो ये गुलझार दादी है ना एकदम बैठ जाती थी। तो हमने पूछा दादी लेकिन आप सोते, दादी कहती थी बड़ी दादी कि दादी आप सोते रहो ना, मालिश करते करते खड़े होते। दादी कहती नहीं नहीं, फिर जाती थी तो हम पूछते थे दादी आप ऐसे क्यों करते हो, आप में तो बाबा आता है, तो बाबा आता है तो आप तो पढ़े हो। बोला दादी है ना हमको पढ़ाती थी, वो 8 साल की उम्र में जो आए थे वो रूप उसका कभी गया नहीं दादी के प्रति ना रिस्पेक्ट। और हमने ये भी देखा कि दादी जी सबको लेके चलती थी, यहाँ एक माला बनी थी। जैसे देखो कोई कोई सेंटरों में कितना भी हो लेकिन कुछ भी मनमुटा होता है, लेकिन दादी जी ने देखो, यीशु दादी जी को आपने कभी स्टेज पर नहीं देखा होगा भाषण करते हुए, अभी की बात और है। शांतामणि दादी को कभी नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसी माला बनी थी एक दूसरे की ग्लानी नहीं सुन सकते थे बिल्कुल ही नहीं। और ऐसी माला बनी थी कि जैसे एक माला के मणके हैं। और सबसे पहले जब शांतिवन मंजर था तब सबसे पहले शांतामणि दादी सेवाधारी को संभालती थी, और सेवाधारी को संभालती थी तो उसके पास एक दो सेवाधारी थी, एक रेणुका माता थी उसकी भी एक सेवाधारी। तो रेणुका माता उस सेवाधारी को जैसे अगर आई तो रखती थी, नहीं रखती थी तो ये जाके रेणुका बहन की कंप्लेन दादी को करती थी। दादी देखो ना, बोला मैं नहीं जानती हूँ, तुम और वो दोनों जाने हैं। दादी आप बड़े हो ना। बोला नहीं नहीं मैं, उसने उसको रखी है ना तो वो जाने, मैं क्यों जानूं। इतना उपराम थे वो लोग। और ये दादी जिया जो थी ना वो ऐसी थी, आपको क्या कहूँ, एक ने कहा दूसरे ने मान लिया, कभी कॉम्पिटिशन हमने नहीं देखी है, कभी कुछ भी नहीं देख, कोई कॉम्पिटिशन नहीं। जबकि मैं आपको बताऊं कि दादी जी का डायरेक्शन मुन्नी बहन मनोहर दादी को देने जाती, दादी आपको आज ये करना है, तो हम बोलते दादी देखो नहीं जैसे कैसे बोलते हैं आपको। बोला नहीं ये दादी का है, उनका नहीं, भले वो ऐसे बोलती लेकिन। तो मतलब दादियों की ऐसी ये थी। आपको मैं बात बताऊं कि जब चंद्रमणि दादी पंजाब में थी ना, दादी ने यहाँ एकदम बुलाया था, क्योंकि कौन शरीर छोड़ दिया था, तो दादी ने आपको यहाँ बैठ जाना, दादी तो एकदम आ गई। तो हमने चंद्रमणि दादी को थोड़ा टाइम के पास, इंद्रप्रस्थ में जब काच बाच नहीं था तभी किसी के पास जाने की कोई पाबंदी नहीं थी, तो हम हर जगह पे घुस जाते थे। तो हमने पूछा कि आप यहाँ आ गई तो आपका वहाँ, बोले दादी जी ने बोला है, दादी जी कम अथॉरिटी नहीं है, बाबा है वो, मतलब इतना उसको ऐसा नहीं। फिर मैं निर्मल संत दादी को एक बार पूछा, मगर दादी आप है ना तो देखो आपको तो बाबा ने आगे करना चाहिए ना, हेड आपको बनाना चाहिए था क्योंकि आप तो उनके वारिस हो। चुप चुप मेरे को कहती, तुमको पता नहीं है ये दादी है ना, इसमें बाबा ने दादी में बहुत बहुत विशेषताएं देखी है, और हम भी दादी को नमन करते हैं, ऐसा नहीं बोला। मुझे कहाँ बिठाना है, मैं हम तो सभी है ही ना बाबा के, मतलब इतना नहीं कि हाँ मेरे को नहीं बिठा इनको बिठा, मतलब कि जालीसी जैसी कोई चीज़ नहीं देखी हमने। इतने सारे लोगों को हम मिलते थे, लेकिन ऐसे मिलते थे, ऐसे निर्माणता उनमें थी, ऐसे आजकल कोई एक साल की टीचर हो ना उसको भी ऐसा लगेगा मैं कुछ हूँ, लेकिन यहाँ हमने देखा इतनी दादियों को कि इतनी निर्माणता, इतनी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना और एक दूसरे के प्रति इतनी भावना। मैं एक सीतु दादी की बात करती हूँ क्योंकि उसके साथ में रही थी 6 नंबर में। तो एक बार है ना, तो मैंने बोला दादी आप है ना, तो चप्पल बहुत ही पुराना था, टूटा हुआ था, और उस हापुर से माताएं बहुत आई थी, बहुत माताएं आई थी, तो उनको है ना तो वहाँ से पैसा सब कुछ बहुत लाती है। तो मैंने बोला दादी ये आपको जो अमानत तो आई, दादी ठप 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 करके गई। मेरे को दादी अभी दादी का टाइम नहीं है, आप कैसे जाओगे? तो बोला कितने बजे टाइम होता है? मैंने बोला तो कोई बात नहीं मुझे ले चल। मुझे डर लगता था कि वहाँ सब होंगे, मेरे को ही पहले तो भगा देंगे क्योंकि उनका टाइम ऐसा था। तो मेरे को लेके गई तो दादी ने उसको ऐसे रिस्पेक्ट दिया, मैं बताऊँ जैसे कोई भगवान हो इस प्रकार से। अच्छा दादी सेतु क्या लेके आई? बोला अमानत है, खोला भी नहीं देखा भी नहीं क्या क्या है। दादी क्या है? दादी अमानत में क्या मैं करूँ, ये तो माता ही देखे गई, उसमें सोने के दागीना था सब कुछ था। तो मैंने दादी को बोला दादी आपके पाँव में चप्पल ही नहीं है, चप्पल इतना पुराना किसट किसट के चलते, मैं लाके दो। ना 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 ना, माता ही कहती थी हम आपको लाके दो। ना ना ना, मैं यज्ञ में बैठी हूँ ना, मेरे को चाहिए तो दादी बैठी है ना, मैं दादी को बोलो नहीं कितना ऐसा चप्पल पहनती हूँ। तो कहते नहीं 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 ऐसा नहीं। फिर मैंने एक बार बोला दादी इनकी चप्पल बहुत खराब है, तो लच्छू दादी के पास गए, लच्छू दादी ने ऐसा चप्पल दिया ना कि वो पहन ही ना सके बराबर, क्योंकि उनको भी मैं बताऊं उनकी है ना इतनी ऊंची भावना रहती थी, एक को बुलाएंगे उसको सामान देंगे, दूसरे को बाद में बुलाएंगे, क्योंकि वो किसी में कुछ ए ना हो जाए समानता। और मैंने बोला कि दादी आपको ऐसे चप्पल लिया है, बोला कोई बात नहीं मैं पहन लूंगी, तो भगवान की घर से मिला है और ये नहीं साधारण थोड़ी है, मैं पहनूंगी। ना 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 मैं पहनूंगी। और एक बार है ना दादी का चप्पल मैंने देखा ना, इतना खराब चप्पल था, तो मैंने मोहिनी बहन को बोला ये लच्छू दादी है ना, हम तो अपना मंगवा लेते हैं, दादी तो मानती नहीं है, लच्छू दादी ऐसा उसको देती है। तो मैंने बोला दादी ये आपका चप्पल तो ऐसा, बोला नहीं ठीक है। अरे इतना मैंने पहना ना तो इतना मेरे को लगता था, दादी लगता है ना? बोला नहीं नहीं यज्ञ का है, आप बताओ। इतनी बड़ी अथॉरिटी और हमको ऐसा लगा कि ये तो है कि कैसा है। एक बार क्या हुआ कि दादी जी है ना उसके गद्दा लाना था, तो दादी ने एक चंद्रमणि दादी को एक कारपेट लानी थी, तो चंद्रमणि दादी की कारपेट तो आ गई नई नई। तो मुन्नी बहन ने बोला दादी देखो उसकी तो कारपेट कितनी नई है, आपकी तो कितनी पुरानी। बोला देखो मुन्नी तेरे को पता है सब फॉलो मुझे करते हैं, मेरे कमरे में जो भी होगा ना वैसे वो अपने वहाँ कमरे में करेंगे। तुम ज्यादा साबुन नहीं रख, एक साबुन रख, एक बॉटल रख, कुछ नहीं रखना, क्योंकि जो भी आएंगे ना मुझे फॉलो करेंगे, इसलिए तुम समझो मेरे को सब काम नहीं करना है। गद्दा लाना था ना, तो इस बोला नहीं नहीं। तो आपको बताऊं मोहिनी बहन दूसरे इंद्रप्रस्थ में चली गई और दादी का गद्दा, दादी ने बोला तुमको जाना है तो जा लेकिन मैं तो यहाँ रहूं। तो हमने इंद्रप्रस्थ में भी हम सबके पास जाते थे, मैंने आप ऐसे अलग हो गए। माने नहीं ना, तो गद्दा कितना दादी को कितना लगता है, लेकिन जैसे अच्छा गद्दा हमने बोला हमने तो ला दिया, दादी ने बोला तुम वहाँ इंद्रप्रस्थ में रह जा अभी। तो ऐसी ऐसी बात है, लेकिन जब मोहिनी बहन को अंदर से तकलीफें हो गई, दादी खड़ी आ गई, दादी यहाँ तक आई, दादी तो मतलब कि तबीयत बहुत खराब हो गई थी। ऐसा नहीं कि चलो चली गई तो, लेकिन भावनाओं देखो हमने तो वंडरफुल लगता था कि कैसा कैसा है इनका रोल देखो। तो ऐसे ऐसे दादियों का रोल ऐसा था कि आपको क्या कहूँ कि आप हमको तो छोटी छोटी बातों के लिए भी कंप्लेन सुस्ती है, कंप्लेन करे ऐसा करे क्या है, लेकिन ये दादियों को तो जो मिला जैसा मिला उनको तो बाबा ने ऐसी पालना दी थी, यज्ञ प्रति इतना कुट कुट के उनके अंदर भावनाएं थी। एक बहन आई थी दादी के पास, तो मैं दादी को फैक्स देने गई थी, तो वो है ना तो कुछ लेके आई थी, तो उसने ऐसे समझा, टीचर थी सरेंडर नहीं थी, तो उसने ऐसा समझा कि मैं है ना तो ये दादी को दूँ, तो दादी को सब दे रहे थे तो उसको भी अंदर से आया, तो 15-20 हजार रुपया होगा उस समय उसके पास। तो उसने बोला कि मेरे को पता नहीं कितना है दादी, दादी कहती इसको को दे दो। तो ये मुन्नी बहन और मुन्नी बहन कहते दादी गिनो तो खरा, ये 15 हजार बोलती है, 15 हजार है कि नहीं है। दादी ने बोला इसने किसको दिया, बाबा को दिया ना, बाबा जाने ओचा हमको बीच में नहीं आने का। अरे गिनती तो करनी पड़ेगी ना, यीशु दादी को दे दिया, यीशु दादी ने बोला नहीं दादी ने कहा ना तो अपने को गिनती करने की जरूरत नहीं, हाँ एक ही माँ के मन की देखो इतना एक दूसरे के प्रति कितना रिस्पेक्ट। और एक बार क्या हुआ मैं आपको बताऊँ, एक बार क्या हुआ कुलझा दादी जब बैठी थी ना तो बहुत सारे रशिया वाले मिल रहे थे, बहुत सारे थे, पूरा हॉल भरा हुआ था। तो नीलूबेन ने, नीलूबेन साथ थोड़ी दोस्ती रखी थी, नीलूबेन ने मुझे बोला कि मंजू बेन आपको यहाँ बैठना है, मेरी तो ड्यूटी हो जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा, उस समय वो ट्रैफिक रहता था। तो मैंने बोला मेरे को जाना पड़ेगा, तो बोला नहीं तुम बैठी रहना इसमें क्या तुम्हारे को जाना है बंद करके, ठीक है। लेकिन 8 बजे नहीं आए तो मैंने दादी को बोला दादी ये नीलूबेन तो आई नहीं मुझे तो जाना, तो बोला कि ठीक है। लेकिन थोड़ी देर में है ना दादी को बुलावा आया प्रकाशमणि दादी का, उस समय मैंने देखा कि इतना सारा पैसा सोना सब कुछ पड़ा था, तो मेरे को दादी मैं तो जाऊं क्या, तुम जाओ। मैंने बोला कि आपको बुलावा आया, बोला हाँ मैं भी जाती हूँ, क्या होगा मैं तो नीलूबेन को फोन ऊपर जाके कहा कि नीलूबेन दादी तो चली गई है, कि कहाँ चली गई, मेरे को दादी बड़ी दादी का फोन आया तो चली गई, तो क्या हो तो ऐसे ऐसे हमारी दादी तो इतनी निर्मोही ऐसी है बात मत पूछो। अब ये सब फटाफट फटाफट चंद्रपाल भाई को फोन किया कि भाई आप आओ। तो फिर मैंने सोचा देखो ना कुछ मतलब कि इतनी ऑथोरिटी, लेकिन ऐसा नहीं कि हाई ये कौन ले जाएगा कौन नहीं ले जाएगा। तो ये फिर एक बार क्या हुआ था, दादी चंद्रमणि जी ने शरीर छोड़ा था, तो उसी समय दादी गई थी दिल्ली में, मैं एक बार सुनाया भी होगा, दिल्ली में गए थे तो वहाँ उनको दादी को फोन आया कि दादी चंद्रमणि दादी है ना, और दूसरे दिन तैयारी करने लगी, दादी की तबीयत भी ठीक नहीं थी तैयारी करने लगी। तो गोपाल भाई और नीलूबेन कहती दादी आपको पता है बीमार हो आपको क्या जाना, तो भी दादी सुनती नहीं है, अपनी छोटी बैग है ना तैयार कर रही है छोटी बैग। तो नीलूबेन ने बोला दादी क्या कर रही हो आपको, गोपाल भाई ने बोला टिकट विकट मिलने वाली नहीं अभी तात्कालिक में, तो क्या बोलते भाई बाबा बैठा है ना तुम नहीं आओगे ना तो ये बैग लेके वहाँ स्टैंड सामने है ना वो एसटी में चढ़ जाऊंगी, और कोई मुझे ले जाने वाला होगा ना तो वहां उतर जाऊंगी, तो 100 रुपया दे देना है दादी की। तो ये तो बैग लेने लेकर के दोनों दौड़े पीछे, दादी कहाँ जाते, बोला मेरे को दादी का कॉल आया है, बड़ी दादी कहेगी ना कि तुम आ जाओ तुम कुएं में पड़ जाओ तो भी मैं पढ़ने तैयार हूँ, बस दादी का कॉल आया। तो ये दोनों पीछे पीछे आए और इनकी टिकट तत्काल में कराई पैसा दे करके। फिर यहाँ जब आई तो दादी का मुख है ना थोड़ा मतलब दोनों नहीं बोलते थे, क्योंकि वो दादी को कहती थी ये नहीं करो ये नहीं करो ये नहीं करो, तो ऐसे ऊपर से फूला हुआ था। तो मैंने बोला दादी आप ये आप आ गए तो आपकी तबीयत, मेरी तबीयत ठीक है, मेरे को तो दादी ने कॉल किया तो आना पड़ेगा, पता है दादी चंद्रमणि है
दादी अकेले हो जाएगी।
तो ऐसे मेरे को इतना अपने बीमारी नहीं जो देखा, कुछ भी नहीं देखा, फटाफट आ गई। तो कितना प्यार होगा इन लोगों में, ऐसे प्यार ने इस यज्ञ को इतना आगे बढ़ाया है, तो हमें भी तो इस सबको देख करके फॉलो करना चाहिए ना। तो ये दादियों की बातें, चंद्रमणि दादी की, और ये निर्मल संता दादी से तो हमारी थोड़ी दोस्ती थी ना, नहीं तो मैं ऐसा कहती दादी आप है ना आप साड़ी नहीं पहनी, बोला ये है ना मेरे को साड़ी नहीं पहनाती। तो दादी ने दादी बोला दादी साड़ी, अरे इतना ही बोला ना दादी रुको मेरे को साड़ी पहनो नहीं तो मैंने कुछ बोलूंगी बात नहीं करूंगी, फूल के बैठ गई फूल के। हाँ दादी कहती देखो ना ये मेरे को तो तुमने उसको क्या बोला, मेरे को दादी को साड़ी का ही बोला, तुमने क्यों बोला, मैंने बोला दादी साड़ी पहन के बैठे ना आज सब मिलने आएंगे तो, नहीं 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 दादी को इतना यहाँ वो था नहीं बॉटल यहाँ देते थे कि आपको पता नहीं सब कुछ है, लेकिन दादी तो बोले नहीं कहती है आज मुझे भोजन अपने आप कर लूँगी तुमकी जरूरत नहीं है, बाबा बैठा है ना मेरे साथ तो है ना उनके सामने रखा ना तो अपने एक एक खा रही है मुझे बोलती। मैंने बोला क्या हुआ, बोला तुम जाना नहीं आज दादी का मोड़ा लग है वो अपने आप खा रही है हमारे से बात नहीं करती है, जैसे साड़ी पहना ही ना फटाफट बात करने लगी। तो ऊपर ऊपर का कितना है। तो ये सब दादी का ही था। तो ये सब दादियों के साथ रहते रहते मजा भी आती थी, खेल भी देखते थे और सीखते भी थे। ओम शांति।
करते हैं और मान हमारा रखते हैं।
दया सिंधु बा।